તારીખ 15/3/1994 શ્રી નિર્ભ્રાંત દર્શન નેકેડી ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 63.
जानना इसमें दो प्रकार है, किस रीति से आप जानते हैं, पर तो परोक्ष में जानो तो या सकते
इसलिए
जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी पर का प्रतिबिंब ज्ञान में उसे लेना रहता है, एक अनिवार्य परिस्थिति है। जो वस्तु का स्वभाव ऐसा है तो क्या हम स्वभाव मिटाना चाहेंगे? प्रकाशन है, उसका प्रकाश है चैतन्य का, उसको मिटाने की कौन सी आवश्यकता है? हमारी ये गलत फहमी है, ये भ्रांति है, पर जानने से हमें राम होता है, ये निकाल जानते हैं, पर को जानने से राम होता है ऐसा सिद्धांत ही नहीं, ऐसे वस्तु स्वरूप भी नहीं, इनको पर को पर जानने से विकरांता होती है। अगर ऐसा होता तो केवल जाने तो सबसे अधिक राम हो जाता, वो बात है ही नहीं, पर को जानने का ना आग्रह है, जैसे जानने का आग्रह नहीं है वैसे नहीं जानने का भी आग्रह नहीं है, ठीक ठीक है। जैसे पर को जानने का आग्रह नहीं है वैसे नहीं जानने का भी आग्रह क्यों, जानने का भी आग्रह क्यों और नहीं जानने का भी आग्रह क्यों? अपने में मस्त रहो, न्याय भाव में मस्त रहो, होकर जनाओ तो जनाओ अपने कारण से, मित्रास भाव में रहेगा, बात खत्म।
अगर जानते नहीं आ रहे तो
शांति से
नहीं, ये गलत है, इसलिए हमें राग हो जाता है,
ये गलत है क्या है? पर को जानने से लाभ होता है, ये एकांत जानते हैं। अगर ऐसा होता तो केवल को सबसे ज्यादा लाभ हो ही जाता, क्यों सुनते धर्म केवल से ही सर्वज्ञ से भी स्थापित किया जाता है, धर्मों का मूल ही सर्वज्ञ है, हम इसको छोड़ के कोई बात नहीं कर सकते, कुछ भी हो लेकिन हम सर्वज्ञ को धर्म के मूल को छोड़ करके कोई प्रतिपादन समझौता नहीं कर सकते, ये हमारी मर्यादा है। हम ये कहेंगे कि सर्वज्ञ को छोड़ दीजिए, केवल को छोड़ दीजिए, ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं हो सकता, ऐसा पसंद हमें नहीं करना है। सर्वज्ञ केवल को इसलिए कि वस्तु का स्वभाव बहुत प्रसिद्ध है, पर स्वभाव को नहीं समझने से ही उनकी प्रगट चल रही है, तो प्रगट स्वभाव को उनको नहीं समझना है, उसको नहीं समझना है, फिर हमारी बात करो, पर हमारी बात तो उनकी चल रही है, क्या करें हमारी बात तो सुधी क्यों चल रही है, ना उनकी क्यों चल रही है? क्या करना है, कौन सा विषय देना है, रातों में कमरा पूरे हो चुके हैं, आवाज भी पूरा हो गया है, अब आगे क्या लेना
है? विषय में जितना समझे है
भाई इसको कुमार उसमें
लेना है, संबंध जरूरी है,
पीछे वाला तो नहीं देगा
आ जाता है सबसे तरह कर्म संबंधी ज्ञानाकार क्रिया ज्ञान की क्रिया है या देह के ज्ञान की है। जैसे कर्मों भी जानने में आता है वे दौड़ कर होते तेज को कर्म में भी राजोष में कर्म के लिए तो कर्म ही है वैसे वैसे खाते में है कृष्ण अगर सही निश्चय नहीं कर सकता उनका सवाल लीजिए। ज्ञानी के आश्रय बंधन का निरोध है परंतु ज्ञान में पर जानने में तो आते ही है यदि ज्ञानी को ज्ञान में स्वयं को ही देखते हैं मुख्य रूप से श्रोता को तो बाधा न हो गए इस प्रकार प्रश्न को संक्षिप्त कर दे।
व्यवस्थित रूप से कैसे है साधन के विषय में बाह्य साधन अनेक प्रकार के ग्रंथ ग्रंथों में दर्शाए हैं लेकिन इसकी क्रमपूर्वक व्यवस्था मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन वो नहीं कर पाते हैं तो जिसको जिसकी रुचि है वैसा साधन वो कर लेता है। जिसकी बुद्धि तगड़ी है दिमाग तगड़ा है तो शास्त्र में चला जाता है जिसका शरीर तगड़ा है वो क्रिया भूतादि में चला जाता है जिसमें भावुकता ज्यादा है वो भक्ति आदि में चला जाता है। ऐसे कई प्रकार के जिसको कुछ पैसे का देने का दान पकड़ते हो तो वो दयादान में चला जाता है। पर इसने तो कुछ न कुछ रूप में साधन बताया है तो बाह्य साधन में अपने रुचि के अनुकूल जीव उलझता है लेकिन कहां से शुरू करना और कैसे आगे बढ़ना इसका कोई व्यवस्थित रूप से विचार किया जाए तो हमारा समय और शक्ति की बर्बादी नहीं होगी। इसी दृष्टिकोण से लेकर के इस प्रकरण को लिखा गया है। पहले प्रकरण का शीर्षक है मोक्षार्थी का स्वरूप। मोक्षार्थ शब्द प्रयोग इसलिए किया है, यानी आत्मा के शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है कि जो मोक्षार्थ होता है वही आत्मार्थी होता है, जो मोक्षार्थी नहीं होता वो आत्मार्थी कभी हो ही नहीं सकता। यदि मोक्षार्थी और आत्मार्थी दोनों शब्द का प्रयोग कभी कभी एक अर्थ में भी किया जाता है, फिर भी प्रयोजन के दृष्टिकोण से देखे तो उसमें अंतर है, निर्भर है। मोक्षार्थी का यह प्रकरण इसलिए लिया है कि जो प्रारंभ में मोक्ष को ध्येय बनाता है, लक्ष्य बनाता है, और उसी में ऐसे ही प्रारंभ होता है, अन्यथा प्रारंभ होता ही नहीं, और ऐसे होने पर ही वो आत्मकल्याण कर सकता है, इसलिए आत्मार्थी बन सकता है, वरना आत्मार्थी भी नहीं बन सकता है सीधा। तो ऐसा विचार है कि हमें आत्मकल्याण करना है, मोक्षा से मोक्षा से मैंने कुछ नहीं समझा, हमें तो आत्मकल्याण करना है, ऐसा नहीं करना। पहले अपना डेस्टिनेशन को अपने चाल चलने के परिणाम पर चलने की पद्धति में डेस्टिनेशन को पहले निश्चित करना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है। इसके पहला पहले परिणाम की जो चाल है उसकी दिशा सही नहीं होती। मोक्ष एक साध्य है और साध्य का संबंध साधन से रहता है, बिना साध्य साधन किसका, जिस जीव का साध्य का ठिकाना नहीं उसका साधन का ठिकाना कैसे हो सकता है, बन ही नहीं सकता। यानी बिना साध्य साधन ऐसा नाम देना ही बेकार है, तीव्रता नहीं दे सकते। इसलिए इस प्रकरण को मोक्षार्थ रहकर मोक्षार्थ का स्वरूप बनाने का शीर्षक दिया है। आदि से जीव का साध्य संसार रहा है, वो अनादि से है, इसलिए संसार के स्थान में मोक्ष के साध्य की फेरबदली किए बिना जो भी प्रवृत्ति धार्मिक क्षेत्र में की जाएगी तो संसार को सफल करने के लिए हो जाएगी, यानी संसारार्थ प्रवृत्ति होगी, मोक्षार्थ प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमने अनंत काल में अनंत वेद धर्म क्रिया किया है, विभिन्न प्रकार के यानी सभी प्रकार के किया है, फिर ये संसार नहीं मिटा है, यही कारण है कि ये सभी प्रवृत्ति संसार अर्थ ही है, मोक्षार्थ हुई नहीं है, ये मेन की बात है। प्रारंभ में वर्तमान परिस्थिति में जीव कैसे चलता है और उस परिस्थिति में से निकलना है, इसका थोड़ा सा विवरण दिया है। इस दौरान काल की अपेक्षा मनुष्यायु का प्रमाण वर्तमान काल में बहुत अल्प है। चतुर्थाया में कृष्णदेव भगवान का 84 लाख करोड़ का आयु था, और उसी चौथे आयु के अंत में भगवान महावीर स्वामी का आयु 72 साल था, और इसके बाद इसका एवरेज और भी कम हुआ है संकट काल में। इसलिए पौराणिक काल की अपेक्षा देखा जाए तो हमारी आयु बहुत कम है। इसलिए काम करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आत्महित करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। और यह तो आयु भी अनिश्चितता से ग्रसित है। इसमें भी कोई निश्चितता नहीं है कि 100 साल जिएंगे या 50 साल जिएंगे या 25 साल जिएंगे, कोई निश्चितता किसी के है नहीं। कोई मनुष्य आयु बांधता है और पर्याप्त काल में आयु पूरा होता है, इतना कम बांधता है। कोई पर्याप्त काल में माता के गर्भ में ही मरता है, और कोई जन्म होने के पहले कभी भी मर सकता है, कोई जन्म के वक्त भी मर सकता है, और जन्म के बाद किसी दिन भी किसी वर्ष में भी मर सकता है। बहुत अनिश्चित है। एक तो आयु अल्प है और अनिश्चितता से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में भी, ऐसी स्थिति होने पर भी बहुभाव मनुष्यों को तो अपनी व्यावहारिक जीवन निर्वाह, सांसारिक प्रगति को, समाज और कुटुंब को संभालने में ही बहुभाव मनुष्यों को व्यतीत करना पड़ता है। आधा जीवन तो सोने में चला जाता है, नींद लेने में, बाकी के जो है उसमें खाना पीना कारोबार करना या गृहस्थी चलाना है, उसमें बहुभाव समय उसमें व्यतीत होता है। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति उसमें आयु का अधिक भाग व्यतीत करना पड़ता है, करना पड़ता है, चलता नहीं है, नहीं चाहे तो भी करना पड़ता है। किसी किसी का पूर्व अल्प प्रवृत्ति से ही निर्वाण हो जाता है, किसी को ऐसी सुविधा होती है कि सांसारिक प्रवृत्ति ज्यादा न करे और निवृत्ति में भी रह सकते हैं। इतना कुछ में लेकर के आते हैं तो उसको सांसारिक प्रवृत्ति के बिना ही उसको समय मिल सकता है। फिर भी निर्वाह हो सकता है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है। उसका सैकड़ों में 5% भी, 5% भी ऐसे लोग नहीं मिलते कि जिसको कुछ नहीं करे तो भी चल सकता है। ऐसे लोग बहुत कम है। सबको कुछ न कुछ व्यवसाय या प्रवृत्ति करते ही जीवन गुजारा चलता है। और ऐसे लोगों को भी क्या होता है जिसको प्रवृत्ति नहीं करे तो भी चले, कि बलवान है सत्संग उसको मिलता है। उसके पास जिसके पास समय है उसको बलवान का सत्संग मिलता है। और पांच इंद्रियों के विषयों के विविधतापूर्ण विशाल विस्तार में उसका जीवन है वो पूरा गिरा हुआ रहता है। भूमिका उदय इसलिए कि उसके पास अपना कार्य करने के लिए समय है पूरा। उसको प्रज्ञात रूप से कंपल्सरी कहीं करना पड़े ऐसा नहीं है। अगर वो चाहे तो अपना जीवन को सुंदर निरामी बना सकता है, लेकिन परिस्थिति उनकी बनती है। जब आर्थिक व्यवस्था सही अच्छी है तो पंचेंद्रियों के विषय में घुस जाता है, पर उतना है सत्संग में चला जाता है, परिणाम पाप के हैं। उदय तो पुण्य का है, इसके परिणाम पाप के हैं। हमारे पास पैसा है, इसका हम सदग्रंथ भी खरीद कर सकते हैं और इसको दारू सिगरेट भी इसी पैसे से खरीद किया जा सकता है। इसका दुरुपयोग हो या सदुपयोग हो ये तो हमारी मति कैसे है उस पर निर्भर है। प्राय ऐसी ही स्थिति है, करीब करीब ऐसी स्थिति है कि बहुभाग लोग तो अपना जीवन चलाने में ही, प्रवृत्ति करने में ही पूरा जीवन देना पड़ता है। कुछ ही लोगों को ऐसी नई परिस्थिति हो तो भी वो अपनी संपत्ति बढ़ाने में या पंचेंद्रीय विषयों को भोगने में ही अपना आयु को व्यतीत करता है, क्या उनको ऐसे समय मिलते हैं, मदद मिलती है, कंपनी मिलती है, बलवान और सक्षम करो कम में जाना, उधर जाना, उधर जाना, ये सब गड़बड़ी का हिसाब किताब आज नहीं है। ये तो एक वर्तमान संयोगिक परिस्थिति का विवरण दिया। अब योग्यता क्या है, इस काल में जो ये यहाँ आए हैं उसकी योग्यता क्या है, कहीं करीब कि पूर्व ने सन्मार्ग की आराधना नहीं की है। सन्मार्ग की आराधना आगे के भाव में कहीं कभी नहीं की है, एक बात, और उसके फलस्वरूप अपने वर्तमान में ही योग्यता है। धर्म आराधन करने के लिए योग्यता की बहुत कमी है, पात्रता नहीं है। पूर्व में भी अच्छे परिणाम नहीं किए और फलस्वरूप ऐसी योग्यता बनी है, ऐसी परिणति बन गई है कि पात्रता की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वो आत्महित संबंधित पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं कर सकता। और ये हमारे समाज की परिस्थिति बहुत प्रसिद्ध है कि हम ये कहते हैं कि हमको सत्यवाद सुनने को मिली है, समझते भी है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा, क्यों? इसलिए कि हमारी जो हीन योग्यता है उसमें पुरुषार्थ उत्पन्न ही नहीं हो रहे, ऐसी परिस्थिति हमने खड़ी कर दी है, ये हमने ही की है। हमारे जो पूर्व परिणाम है काल के जीवन के, हमारे परिणाम को हम देखें तो मालूम पड़ जाएगा के वर्तमान हमारी जो योग्यता की हीनता है तो उसी के फल स्वरूप में है, उसी के आधारित है। परिणाम की उपस्थिति नहीं है, लेकिन परिणाम के फल की तो अवश्य उपस्थिति है। जिस परिणाम से योग्यता बनी है वो तो वर्तमान में मौजूद है, इसलिए प्रगट आत्मस्वरूप के बताने वाले सत्पुरुष के वचन भी हमको हमारे मर्म स्थान तक पहुंच नहीं पाते। हम उतने आवरण में आ गए हैं, हमारी आत्मा उतनी आवरित है कि ये जो आत्मा को जगाने वाले, जागृत करने वाले वचन हैं वो रिमाउंड हो जाते हैं, पीछे जाते हैं, भीतर में नहीं जाते हैं, टकरा करके पीछे जाते हैं। नहीं, वो बात कहेंगे, परिस्थिति क्या है वो समझते हैं, अब क्या करना वो दूसरी बात है। पहले निदान तो कर ले, रोग है कैसा है, किस डिग्री का है, फिर इलाज की बात तो करेंगे आगे। इलाज की बात करने के पहले निदान तो करना ही पड़ता है ना, निदान सही नहीं तो इलाज कहां से सही होगा। कहां खड़े हैं वो तो समझना पड़ेगा कम से कम, फिर एक कदम कैसे आगे बढ़े हुए बात लेना। पूर्व में सन्मार्ग की आराधना न की होने से और इसके फलस्वरूप इस प्रकार की हीन योग्यता के कारण आप ही संबंधित पुरुषार्थ उत्पन्न न कर सके। जीवों का ऐसा ही प्रकार सामान्य तरह देखने में आता है, ये जनरल बात है, कोई विशेष की बात, कोई एक दिन की बात दूसरी है, सामान्य ये परिस्थिति नजर आती है। संक्षेप में इस बात को ऐसे कह सकते हैं एक काल में पूर्व में कभी नहीं जाना हुआ मोक्ष मार्ग को, पूर्व में कभी नहीं जाना हुआ, प्रतीत नहीं किया हुआ और आराधित नहीं किया हुआ ऐसा जो सन्मार्ग है वो तो जीव को प्राप्त होना दुष्कर हो गया है। इतने आयु चल गई है फिर भी प्राप्त सन्मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई है तो इसकी दुष्करता को साबित करती है, ये इसका सबूत है। तो ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है इस परिस्थिति में। ऐसा होने पर भी भले ही ऐसा हो इस फिक्र स्वीकार कर लिया हम, तो हम इस लाइन को पकड़ते हैं कि ऐसा होने पर भी कौन अपना आत्मकल्याण कर सकता है और कैसे कर सकता है। भले ही परिस्थिति में उसका प्रयास हो गया तो उसको जो बीता उसको नहीं बीता ऐसा तो कर सकते थे, उसमें कोई फिरफा हो सकता है, ठीक है ऐसा हुआ है कोई बात नहीं। ऐसा होने पर भी यदि किसी मनुष्य जीव को मार्ग प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य होए, ये शर्त है क्या, किसी कीमत पे हमें मोक्ष मार्ग में आना ही है, हम भटकना नहीं है, ऐसा एक लक्ष्य होवे, दो लक्ष्य नहीं चलेगा, इधर एक ही लक्ष्य चलेगा, हमें संसार को भी संभालना है और हमें सन्मार्ग में भी आना है, ये दो घड़े की सवारी गिरने के लिए होती है, करने के लिए नहीं होती। यदि किसी मनुष्य को एक मार्ग प्राप्ति का ही लक्ष्य हो है तो अवश्य मार्ग प्राप्ति संभवित है, ये लक्ष्य से संभवित है, फिर आगे क्या करना वो तो आगे बात चलेगी, लेकिन यह संभव है। जहां तक एकमात्र लक्ष्य है इस परिस्थिति में हम नहीं है वहां तक मार्ग प्राप्ति कुछ भी कर ले संभवित नहीं है। अतः सम्यक दर्शन आदि मोक्ष मार्ग को पाने वाले जीव की मुमुक्षुता यथार्थ मुमुक्षुता किस प्रकार की हो, किस प्रकार की होती है, यह विषय सत्पुरुषों के वचनों के आधार से विचार करने योग्य है, हमारे मनमानी नहीं करते। इसमें भी जो सत्पुरुष ने इस विषय में मार्गदर्शन दिया है उसी को आधार बना करके हमको इसका विचार करना योग्य है। प्रथम सर्वप्रथम मुमुक्षु जीव को मार्ग प्राप्ति के प्रबल निमित्त दो प्रकार के हैं, निमित्ताधीन प्रवृत्ति पर जीवन चल रहा है, संसारी जीव का एक समय भी ऐसा नहीं है तो निमित्ताधीन परिणाम नहीं कर रहा है। आत्म कर्म का उदय है उसके निमित्त में उसका परिणाम लग रहा है, तब उसी परिस्थिति में निमित्त की फेरबदली में एक दो निमित्त ऐसा है कि जिससे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति संभवित हो सकती है। उसमें पहला निमित्त है प्रत्यक्ष सत्पुरुष का योग, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष सत्पुरुष का योग के सबसे बलवान और सबसे उत्कृष्ट निमित्त है। पर दूसरा निमित्त है सत्शास्त्र का स्वाध्याय, जब सत्संग का योग नहीं बैठता हो तो बाकी के समय में हम शास्त्र स्वाध्याय कर सकते हैं, वो भी सत्पुरुष के आज्ञानुसार, हमारे हमको जो भी अच्छा लगे वो पढ़ लें या ठीक लगे वो पढ़ लें, ऐसा भी इसमें नहीं चलता है। उपांगदेव के समय में इनके जो मुमुक्ष थे तो कोई भी ग्रंथ पढ़ने के पहले आज्ञा देते थे, एक साथ हम ये ग्रंथ पढ़ सकते हैं, आपकी आज्ञा है क्या? अगर आपकी आज्ञा नहीं है हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम नहीं जानते हमारी योग्यता क्या है। किस ग्रंथ पढ़ने की हमारी योग्यता है वो हम खुद नहीं जानते, इसलिए ये भी एक दवाई है, लेकिन ये हमारे अनुकूल है कि नहीं है वो हम नहीं जानते। सदगुरु वही दसुदान आप कहेंगे कि हमारे लायक है तो हम पढ़ेंगे, आप कहेंगे नहीं तो नाक देंगे तो नहीं पढ़ेंगे।
अगर कोई प्रत्यक्ष सदगुरु का सब्स्टिट्यूट शास्त्र स्वाध्याय समझ ले तब फिर क्या
होगा? गलती होगा, ये गलती होगा। क्या प्रश्न है? चलो सत्पुरुष नहीं है अभी तो शास्त्र स्वाध्याय में ही लगे रहो, पानी पीने को नहीं मिलता है, लड्डू खा लो भुजिया खा लो मर जाओ, पानी पूछा लगे तो पानी ही चाहिए, उसमें भुजिया भुजिया चल सकता नहीं है, ऐसे बात है। नहीं है तो क्या करना, शास्त्र नहीं पढ़ना फिर ये प्रश्न कर सकते हैं आप, चलो नहीं है तो क्या शास्त्र पढ़ना बंद कर दें? नहीं है तो आपने खोज किया कि नहीं किया, खोज करने का कोई आपको विचार आया कि नहीं आया, तो चलती है कि नहीं चलती है? पानी नहीं मिलता है तो छोड़ो मारो गोली पानी को, हम मुझे आशा देंगे ऐसा कोई करता है क्या? नहीं चले तो नहीं चले, उस परिस्थिति में आना चाहिए। उस परिस्थिति को छोड़ करके जो शास्त्र स्वाध्याय करता है उसको प्रत्यक्ष सत्पुरुष के योग का महत्व नहीं आया है, तो वो महत्व नहीं आने से वो कितना भी शास्त्र पढ़े मोक्ष मार्ग में आ सकता नहीं है। उसमें चारों उम्रों में सभी शास्त्र एक स्तर के नहीं है, मुझे शुक्र ध्यान के भी शास्त्र हैं, मुनियों के उपदेश के भी शास्त्र हैं, ज्ञानियों के उपदेश देने वाले भी शास्त्र हैं, और मनुष्यों को भी उपदेश देने वाले शास्त्र हैं। तो आपका एक इसका एक बहुत ऐतिहासिक नमूना दे सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने जब पूज्य जयंत्री का वचनामृत प्रसिद्ध हुआ तब तो ऐसे बोले, वो ये प्रसिद्ध बात है हजारों के बीच में बोले हैं कि हम किसी ग्रंथ के लिए कभी बोले नहीं हैं, लेकिन इस ग्रंथ के लिए हम कहते हैं कि 1,00,000 पुस्तक छपाओ। कहिए रसिक भाई बोले थे ऐसा क्यों? हम प्रश्न उठाते हैं गुरुदेव ने ऐसा क्यों बोला, जबकि गुरुदेव को ज्ञान समय सार से हुआ था, वैसे के वचनामृत से नहीं हुआ था। यह तो प्रसिद्ध बात है, वैश्री का तो जन्म ही बाद में हुआ है और वो जन्म देने वाले गुरुदेव हैं, इसके धर्म पिता तो गुरुदेव हैं। संसार पिता के बाद नहीं चलता है, धर्म पिता के बाद चलता है। मोक्ष मार्ग में जन्म हुआ वैष्णु तो गुरुदेव निमित्त है, तो समय सार के लिए नहीं बोले तो वैश्विक के वचनावर्त के लिए क्यों बोले? ठोस प्रश्न उठाना चाहिए, यही कारण है इसके पीछे। तो अपने लिए नहीं बोले थे, मुमुक्षु समाज के लिए बोले थे। उन्होंने ये देखा कि वैश्विक के स्वाध्याय में मुमुक्षु की भूमिका के मार्गदर्शन के इतनी बातें आई हैं, इतनी अमूल्य बातें आई हैं कि इसका स्वाध्याय मुमुक्षु के लिए अधिक प्रयोजनपूर्ण है, समय सार से भी शायद अधिक प्रयोजनपूर्ण है। इस मुमुक्षु की भूमिका का विषय बहुत चर्चित किया है और ये इनके बहुत निर्मल दृष्टि से हम तो प्रत्यक्ष परिचय से कह सकते हैं, 10 साल का आपको परिचय रहा है, इतने निर्मल दृष्टि से कि वर्तमान मुमुक्षु समाज को क्या देना चाहिए, ये इनके जो कोई नजर थे एक उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। और यही अपने प्रवचनों में वो बोली, वो लिखा गया और बाद में पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गुरुदेव की नजर में वो बात आई, अरे गुरुदेव ने तो कभी व्यक्ति का प्रवचन सुना ही नहीं था, वो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है कोई सुना ही नहीं था, क्योंकि वो प्रवचन तो महिलाओं की सभा में करते थे, उसमें कोई पुरुष को अलाउ नहीं करते थे, इसलिए किसी को पता नहीं था, समाज को तो पता ही नहीं था, बहने लिख लेती थी, फिर भी उसकी हिम्मत करने वाले तो गुरुदेव थे। तो गुरुदेव ने उसको इवैल्यूएट किया है, उसकी जो जितनी महिमा है उतनी महिमा बताई। तो उसका मतलब यह है कि मनुष्य को पढ़ने लायक ये ग्रंथ है, ये इसका मतलब है। लाल कपा का मतलब क्या होता है कि ये ग्रंथ पढ़ने लायक है, इसमें से तुमको मिलेगा, समय साथ पढ़ने का तुम्हारा मुद्दा नहीं है ऐसा कहते हैं, ये इसमें गर्भित है। तो ये बात है, तो इसकी आज्ञा से चलना पड़ता है, हमारी मनमानी नहीं चलती इसमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना है। हमने कभी पूछा, इतने साल में हमने गुरुदेव को पूछा, महाराज मेरी योग्यता मैं नहीं जानता, कृपया आप बताएंगे कि हम कौन सा ग्रंथ पढ़ेंगे, पूछा है कभी? अगर किसी ने पूछा हो तो बता दें, अगर जिसने पूछा है वो हमको मालूम है तो हम बता सकते हैं कि पूछा तो गुरुदेव ने क्या कहा। जो मैंसर के वचनामृत प्रसिद्ध नहीं थे वो तो 1933 में अभी अभी प्रसिद्ध हुए, गुरुदेव के प्रयाण के पहले 3 साल पहले वो तो प्रसिद्ध हुए, इसके पहले अगर कोई नए मुमुक्षु आते और पूछते गुरुदेव को और मैंसर दोनों को हम क्या पढ़े, तो क्या श्रीमद रामचंद्र पढ़ना है, क्या बोलते हैं? और इसका सबूत आज भी मैत्र के पत्र है, तो श्रीमद राजचंद्र कह रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कहते थे, समयसार के लिए क्यों नहीं कहते थे? मुमुक्षु की भूमिका के योग्य जो मार्गदर्शन है तो कहां पड़ा है, तो उनकी नजर में है, ये बात है। इसलिए चार लोग विद्यमान है, अभी तो बड़ा खजाना है, शास्त्र तो समुद्र है, लेकिन इस समुद्र में कहां गोते खाएंगे हम, हमारे प्रयोजन के बाद वर्तमान में कौन सी है, इसकी सूझबूझ हमें नहीं है। तो ये सत्पुरुष की आज्ञा से पढ़ने से हमारा जो समय और शक्ति का व्यय है वो दुर्व्यय नहीं होगा, वरना दुर्व्यय हो जाएगा शास्त्र में भी, ऐसी परिस्थिति है। ये जीवन तो बहुत अल्प है, इतने शास्त्र पढ़े हैं कि ये जिंदगी तो बहुत कम है इसके पीछे। खुद गुरुदेव कहते थे हमने कई शास्त्र नहीं पढ़े, दिगंबर शायद भी ये प्रमल कमय मार्तंड वगैरह जो है ना, अभी जिसका अनुवाद ही नहीं है सब संस्कृत में है, हिंदी विवाह का जो अनुवाद नहीं हुआ है वो संस्कृत भाषा उसमें जानते नहीं पढ़े, वो न्याय शास्त्र है, सैकड़ों हजारों न्याय इसमें लिखे हैं। कहते थे हम तो जीवन थोड़ा है तो मुद्दे मुद्दे की बात को पकड़ते हैं, लंबे छोड़े पढ़ने में नहीं जाते हैं, ऐसा कहते थे। ये सब ग्रंथ हम नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने का समय भी नहीं।
वास्तव में यथार्थ मोक्षार्थी होता है वो प्रत्यक्ष सत्पुरुष से क्या ये प्रश्न करेगा कि हम क्या पढ़ें कि हम क्या करें, ये प्रश्न करेगा।
ठीक है, प्रश्न दो तरह का होता है, हमें क्या पढ़ना या हमें क्या करना, कौन सा प्रश्न आएगा? जिसको पढ़ना का इरादा है तो पहले डिसीजन ले लेता है कि मुझे पढ़ना है क्या, अपने आप निर्णय कर लेता है कि मुझे पढ़ना है,
इन्हें निर्णय नहीं करना चाहिए, ठीक मुझे क्या करना चाहिए, उसमें तो क्या हुआ मुझे क्या पढ़ना है, इसका मतलब शास्त्र स्वाध्याय का साधन मैंने निश्चित कर लिया है। अब हम बताइए कि इस साधन में से कौन सा ग्रंथ मैं पढ़ूं, वो भी नहीं बना, ठीक क्या करना मुझे, यानी मैं पढ़ाई के लाइन में आगे बढ़ूं या प्रैक्टिकल लाइन में आगे बढ़ूं, ठीक प्रश्न को खोल सकते हैं इस तरह से। कार्य पद्धति में पढ़ाई के अलावा एक प्रैक्टिकल साइड भी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिसमें कोई पढ़ाई की आवश्यकता भी नहीं है। तो बहुभाग ज्यादा पढ़ने वाले को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, और प्रैक्टिकल साइड में आने वाले को पढ़ाई का इतना दिलचस्पी भी नहीं रहता है, मुझे मुझे की बात समझ लेता है सुन करके या पढ़ करके, बाकी अपने काम में लग जाता है। इस प्रकार की जो कार्य पद्धति है उस पर अगर हमारा ध्यान नहीं गया तो हम पढ़ते ही रहेंगे या सुनते ही रहेंगे, लेकिन सुनते सुनते भी थक जाएंगे और पढ़ते पढ़ते भी थक जाएंगे, क्योंकि इसकी सही कुदरती प्रक्रिया नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। क्या ये कर्तृत्व से होता है, हम ऐसा करें कर्तृत्व इसमें आता है, वहां तक उसकी सामाजिक स्वाभाविक प्रक्रिया उसकी नहीं होती है। यहां मार्ग प्राप्ति के दो निमित्त हैं, उक्त दोनों प्रकार के निमित्त का योग हो, दोनों का योग हो, मान लो तत्पुरुष भी अवेलेबल है और शास्त्र भी अवेलेबल है, तो वह अक्सर महान पुण्य योग है, इसमें कोई संशय नहीं है, दोनों हमें उपलब्ध है, तो ये बहुत बड़ा पुण्य योग है। फिर भी प्रत्यक्ष तत्पुरुषया पुरुष का योग ही विशेष बलवान कारण है, सत्शास्त्र बलवान कारण नहीं है। सत्शास्त्र तो आचार्यों का लिखा हुआ है, वो तो प्रत्येक गुणस्थान वाले के वचन है, जबकि सत्पुरुष नीचे के गुणस्थान वाले हैं, वस्त्रधारी है, गृहस्थ भी हो सकते हैं, फिर भी प्रत्यक्ष सदगुरु संघ में ही परोक्ष जिन उपकार एवं लक्ष्य थया विना अंगे आत्मविकार, आत्मा विचार अंगे नहीं, प्रत्यक्ष का इतना महत्व समझ में नहीं आया तो बात उल्टी ही उल्टी कटेगी, कोई सीधी बात करने वाली नहीं है। जिससे इस प्रकरण को संपूर्ण लक्ष्य से विचारना, इस प्रकरण का संपूर्ण लक्ष्य से विचार करना इच्छनीय है, वांछनीय है। अनंत काल में ज्ञानी पुरुष का वचित समागम विशिष्ट प्रकार के पूर्व के पुण्योदेश होता है, पैसा का मिल जाना आसान है, राज की सत्ता की जुड़ा हाथ में आ जाए, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बन जाए, बहुत आसान है, देवलोक का देव हो जाना ये भी बहुत आसान है, सत्पुरुष का योग मिलना इतना आसान नहीं है। ये तो लौकिक पुण्य का फल है, जब सत्पुरुष का योग बना है विशिष्ट प्रकार के पुण्य का फल है, जिसमें ये बैठा है, ये सब सुलभ है, सत्पुरुष का योग मिलना उतना सुलभ नहीं है। चतुर्काल में भी प्रभाग में भी सत्पुरुष का योग मिलना मुश्किल सुलभ है, और सब सुलभ है उस क्षेत्र के उपेक्षा से दूसरे दूसरे प्रकार के स्वभाव होना भी सुलभ है, उसके फल मिलना भी सुलभ है। और इस प्रकार के स्वभाव और इसका फल मिलना बहुत क्वचित क्वचित ये होता है। उसका रेशियो प्रोपोर्शन देखा जाए तो ये परिस्थिति आना देती है। और ये देखने के लिए तो भले हुए नहीं है कि चलो 9 से 10 स्वाध्याय हो गया सोलह मई मंदिर में, ऐसा नहीं चलता है ना। इसका विकल्प हुआ और ये बच्चे नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं। छोड़ा क्यों? रह सकते नहीं थे इसलिए छोड़ा है। अगर रह सकते थे तो छोड़ने की जरूरत क्या है? कोई दबाव से छोड़ा है क्या? ये भावनिक पना क्या होता है इसके पता है। कम्युनिकेशन का तनाव क्या होता है? कोई राजा महाराजा प्रवृत्ति नहीं है, इनके परिवार वाले ऐसा नहीं करते। माना हमारे जो महल है उसके बगल में ऐसा उसमें गार्डन है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, हमारी तरफ बगल का। तो आप जैसे बताओ कि कुटिया बनाने आते बताइए कि वहाँ की अब जैसे कि वो पत्थर के जो भी कहो गुफा बना दे कुछ भी बना दे, लेकिन हमारे नजर के सामने रहे। अब तो महत्व नहीं है, हम लोग महत्व है तो हमारे नजर के सामने तो आप रह जाइए। कृपा करके इतनी तो कृपा करें, आपको ज्ञान ध्यान क्यों करना हो सकता है? हम कोई वापस नहीं लगाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपका दर्शन तो हो सकता है। क्या ऐसी व्यवस्था वो नहीं दिखा सकते थे क्या? क्यों नहीं दिखाई? कि इसके परिणाम ऐसे लगते नहीं है। ऐसी परिस्थिति में रहना ये व्यवस्था उसमें नहीं रह सकते, जब वो निकल जाते हैं वहां से। क्या इसके पीछे इसकी रानी रोती नहीं है क्या? हंसती है क्या? उसको कुछ नहीं होता है, दुख नहीं होता है क्या? और किसी को दुखी करके ऐसा क्यों दर्द करना अच्छा है क्या? चलो किसी को दुखी हो जाए फिर भी हम हमारा धर्म करें, ये कोई निष्ठुरता नहीं है, निर्दयता नहीं है क्या? ये वितरकता है क्या? हाँ ये वितरकता है, निर्दयता नहीं है। ऐसे वितरागी मुनि तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जगत के किसी जीव को भी दुख पहुंचे इस अभिप्राय में मुमुक्षुता में नहीं खड़े थे। मुनि बना की तो बात ही नहीं, मुमुक्षुता तो तब आया है। फिर भी अपने परिणाम जहां महत्व पूर्वक नहीं लगते हैं वहां वो जबरन लगा सकते भी नहीं है, इसी का नाम भाव नहीं है। ये गोपाल देव थे, गुरुदेव थे, ज्ञानी पुरुष थे, संप्रदाय के किसी मुनि के पास क्यों नहीं गए? उनको तो ज्ञान था, मानो के साधारण मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं है कि मुनि कैसे होते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुनिराज का विवरण किया है। मुनिराज की दशा कैसी होती है इसका वर्णन विवरण कैसा है व्याख्यान में? कितनी भक्ति किया है सावली के संतों की दशा को विवरण करते हुए आंख में से धार निकल जाती थी आंसू के, गुरुदेव को देखा है उसने प्रत्यक्ष के ऐसे मुनियों का वियोग गया है, क्या करे इसका दर्शन नहीं मिलता। तो संप्रदाय में नहीं थे मुनि, तीनों संप्रदाय में क्यों किसी के पास नहीं गए? इनके जीवन से बोध मिलता है, इनके जीवन से बोध मिलता है, बहुत प्रयोजन रूप से है, वरना हम कहीं न कहीं अनुमोदना कर देंगे, पता नहीं चलेगा कि इसमें हम किसकी अनुमोदना करते हैं, क्यों करते हैं, जानते नहीं अनजाने में भी कर देंगे। इसको बजाय जिज्ञासा में रहना अच्छा, नहीं जानते तो जिज्ञासा में रहें, लेकिन फाइनल जजमेंट देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं अनंत काल में ज्ञानी पुरुष का उचित समारोह विशेष प्रकार के पूर्व के पुण्योदय से होता है। ये सामान्य पुण्य नहीं है, एक विशेष प्रकार का पुण्य होता है। तो वैष्णव का ऐसे उदय काल में यदि किसी आत्मार्थी जीव की योग्यता सत्पुरुष को पहचानने के सुयोग्य हो, अर्थात ऐसा समागम होने पर पहचान न कर सके, ऐसा बाधक परिणाम उसे न हो सका हो, तो उस जीव की आत्मकल्याण की अभिलाषा सफल हो सकती है। क्या बात क्या है इधर कि सत्पुरुष मिलता है और पहचान नहीं हो सकती है, इसका कारण यही है कि वर्तमान में जीव पहचान नहीं हो सके ऐसे बाधक परिणाम में प्रवृत्त रहा है, इसलिए उसकी योग्यता नहीं है पहचानने की। पहचानने की योग्यता आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अनंत काल में अनंत बार सत्पुरुष मुनिराज और पेटुंकर आदि प्रवृत्त मिले हैं, एक बार किसी की पहचान नहीं हुई है। एक बार पहचान होने से निर्वाण पद का रिजर्वेशन होता है, पहचान होने से ही पहचान इतने जबरदस्त चीज है कि एक बार पहचान हो गई इसका कभी बड़ा हो गया नहीं। इसका यही कारण है कि वर्तमान में ऐसे परिणाम लगने चालू है जिसे पहचान होने में बाधक है। ऐसे परिस्थिति में जो खड़ा है और बिना पहचान हुए किसी का आत्मकल्याण हुआ हो या होगा इस तीन काल तीन लोग में नहीं बनता। सबसे पहले कुछ काम होता है तो ये पहचान से होता है। बिना पहचान बिना ज्ञानी ज्ञान की प्राप्ति तीन काल में स्थित पावे नहीं गुरु गम बिना। गुरु गम में क्या चीज है, योग्यता है वो गुरु गम है। गुरु के वचनों की गम पड़ती है इसी योग्यता को गुरु गम कहते हैं, तो पात्रता को गुरु गम कहते हैं। ऐसा परिणाम होने से आत्मकल्याण की अभिलाषा, पात्रता होने से पहचान होने से ये अभिलाषा सफल हो सकती है। अन्यथा उपादान की योग्यता बिना तो ऐसा दुर्लभ योग भी अयोग रूप ही साबित होता है। क्या ऐसा योग भी अयोग के बराबर साबित हो जाता है, इसलिए योग्यता बिना ज्ञान प्राप्ति होती नहीं। सबसे प्रथम इसके पर लक्ष्य जाना चाहिए, अगर इसके पर लक्ष्य नहीं गया तो दूसरा दूसरा ही चलता रहेगा और जो अनादि से चल ही रहा है ऐसा करेगा। आगे का विषय
धन्य धन्य गीत राग वाणी अमर